नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के विस्तार के लिए 6,520 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 4 वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता को भी स्वीकृत किया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। अमेरिका की शुल्क घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा, भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। म्यांमा ने प्रधानमंत्री के रूप में यू न्यो साव की अगुवाई में नई सरकार के गठन की घोषणा की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और तरुण मन्नेपल्ली मकाओ ओपन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान जारी केंद्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ कुल 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है, इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया 6,520 करोड़ रुपीज, और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनुदान सहायता एनसीडीसी को भी मंजूरी दी है।
एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है, आज उसका कैपिटल 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांटी नेट के माध्यम से। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, ये जो लोन्स जाते हैं करीब करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं, 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए। एनसीडीसी जो लोन देती है उस लोन में करीब करीब 99.8% रिकवरी है, नेट एनपीए 0 है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों के लिए 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क का लगभग 574 किलोमीटर विस्तार हो जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 11,169 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 229 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगा। आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर बार बार स्थगित हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित होने से पहले लोकसभा 2 बार और राज्यसभा 3 बार स्थगित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद जब शाम 4 बजे शुरू हुई तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाए जाने की अमरीका की हाल की घोषणा के प्रभावों का आकलन कर रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है।
राज्यसभा में भी शोर शराबे की स्थिति रही। सदन की कार्यवाही जब दोपहर बाद 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के बीच पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही शाम 4:30 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही जब फिर शुरू हुई तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय वस्तुओं पर अमरीका द्वारा घोषित शुल्क के बारे में बयान दिया, लेकिन विपक्ष का शोर शराबा जारी रहा और बाद में सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि इस वर्ष 1 जुलाई तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में राजमार्गों के किनारे खुदरा दुकानों पर कुल 368 अपना घर विश्राम सुविधाएं स्थापित की हैं। आज लोकसभा में श्री गोपी ने बताया कि ट्रक चालकों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रक चालकों की लंबी दूरी की यात्रा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपना घर पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि ट्रक चालकों ने इस पहल की काफी सराहना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में देवघर एम्स की स्थापना के 6 वर्षों के अंदर ही 5 आदिवासी गांवों को गोद लेने और वहां के लोगों को बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उसकी सराहना की है। राष्ट्रपति मुर्मू आज एम्स देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और दूरदराज के क्षेत्रों के आदिवासी लोगों को ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने की भी सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 50% से अधिक महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने छात्रों, संकायों और संबंधित चिकित्सा पेशेवरों से आग्रह किया कि वे सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करें।
राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का ये प्रयास है कि स्वास्थ्य से जुड़े आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का दबाव लोगों पर कम से कम हो। इस राष्ट्रीय प्रयास में एम्स देवघर जैसे संस्थानों और आप जैसे डॉक्टरों का इंस्टीट्यूशनल रोल भी है और इंडिविजुअल भी। मैं एम्स देवघर के प्रशासकों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों की पूरी टीम से आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब मिलकर स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सूची बनाएं और आप देखें कि उन गोल्स को प्राप्त करने में भारत की क्या स्थिति है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यात्रा के दौरान 9,70,00,000 से ज्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान श्री मोदी लगभग 2,200 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। निर्वाचन आयोग कल विशेष गहन पुनरीक्षण पहल के अंतर्गत बिहार में मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन से पहले अपने संदेश में कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फिजिकल और डिजिटल प्रारूप में मतदाता सूची उपलब्ध कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान वीवीपैट पर्चियों की गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 10 उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की जांच और सत्यापन किया गया। आयोग ने कहा कि सभी मामलों में मशीनें जांच में सफल रहीं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। उन्होंने कहा कि इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार है। श्री सिंधिया ने मोबाइल टेलीफोनी के 30 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में मोबाइल कॉन्क्लेव में कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत की डिजिटल यात्रा असाधारण रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में दूरदराज के गांवों और महानगरों तक डिजिटल पहुंच ने नागरिकों को सशक्त बनाया है।
भारत नेट परियोजना के आधार पर आज देश के 2,14,000 ग्राम पंचायत जुड़े हुए हैं ओएफसी फाइबर के साथ और भारत नेट द्वितीय योजना के आधार पर $17 बिलियन 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना किसी अमेरिका और यूरोप ने नहीं सोचा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 6,50,000 गांवों को ओएफसी ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ने जा रहे हैं।
मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख और घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर में मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से 6 लोग मारे गए थे और 95 अन्य घायल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2008 के मालेगांव विस्फोट में सभी आरोपियों को बरी करने के एनआईए की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया।
हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। म्यांमा की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद NDSC ने आज एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया। एक रिपोर्ट।
म्यांमा रेडियो और टेलीविजन के अनुसार संघीय सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री यू न्यो साओ कर रहे हैं और राज्य सुरक्षा और शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन ऑंग हुआइंग हैं। NDSC ने रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ को संप्रभु शक्ति हस्तांतरित करने के आदेश को भी रद्द करने का निर्णय लिया। म्यांमा की राज्य प्रशासन परिषद के प्रवक्ता जॉ मिन टुन ने कहा कि NDSC ने आम चुनाव कराने के लिए आपातकाल समाप्त करने का निर्णय लिया है। फरवरी 2021 में म्यांमा के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मियंट स्वे ने एक वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा की थी और रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ को संप्रभु शक्ति हस्तांतरित की थी। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
और अब बात खेलों की। भारत के लक्ष्य सेन और तरुण मन्नेपल्ली मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने आज इंडोनेशिया के चिको ओरा द्वी वार्डोयो को हराया, जबकि तरुण मन्नेपल्ली ने हांगकांग के ली च्युक यू को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल मैदान में वर्तमान एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच खेला जा रहा है। चायकाल तक भारत ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 85 रन बनाए। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तराखंड के अनेक भागों में अधिक से अत्यधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों में बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज आंधी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के अनेक भागों में आंधी आने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के विस्तार के लिए 6,520 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 4 वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता को भी स्वीकृत किया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। अमरीका की शुल्क घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा, भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। म्यांमा ने प्रधानमंत्री के रूप में यू न्यो साओ की अगुवाई में नई सरकार के गठन की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।